ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिछले दो सेशंस आपके टेक्निकल रहे और पहला सेशन था कि जिसमें बैलेंस की बात अपने जीवन में सीखी और दूसरा सेशन के बैलेंस करते हुए भी स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, हल्के रहो आप, तो हल्के रहना भी सीख लिया, बैलेंस करना भी सीख लिया। अब क्या सीखेंगे? अब जीवन की वास्तविकताओं से भी हमारा सामना होता है कभी कभी, और उस समय व्यक्ति जीवन के अंदर कभी निराश उदास भी हो जाता है। तो ऐसे समय में भगवान ने गीता के अंदर हमें क्या बताया? श्रीमद् भगवद् गीता भारत के सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र शास्त्र है कि जिसमें भगवान उवाच शब्द आता है। यानी भगवान ने जो मधुर गीत गाया फर्स्ट पर्सन में, वो बातें हैं। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई न कोई दिव्य आत्माओं की वाणी है, कोई महात्माओं की वाणी है, लेकिन परमात्मा के महावाक्य नहीं है, परमात्मा की वाणी नहीं है। गीता ही परमात्मा के महावाक्य है, और इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता हम सभी को एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। श्रीमद् भगवद् गीता के अंदर जो नीतियां भगवान ने बताई है वो वर्तमान समय को देखते हुए बताई है, और इसलिए वर्तमान समय के वातावरण, वाइब्रेशंस और हालाते जिस तरह की व्यक्ति के सामने है उसी का ही एक स्वरूप अर्जुन का लिया गया है। और अर्जुन को भगवान हर संघर्ष में विजयी कैसे होना है उसकी तरकीब बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अगर देखा जाए तो हमारा जीवन भी आज के युग में हर एक का जीवन संघर्ष बन गया है। हर समय युद्ध है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है। और ऐसा जब जीवन संघर्ष हो जाता है, ऐसी जब युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो इस युद्ध में विजयी होने की विधि क्या है, ताकि हर संघर्ष मेरा विजय में परिवर्तित हो जाए, तो उसके लिए कौन सी बातों का ध्यान देना है, ये श्रीमद् भगवद् गीता हमें सिखाता है। श्रीमद् भगवद् गीता को माता की उपमा दी गई, गीता माता कहते हैं, क्योंकि जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह गीता भी वो मां है जो हमें ज्ञान का दूध या अमृत पिलाते हुए हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। परंतु आज की दुनिया के अंदर उस मां को हमने एक लाल कपड़े में लपेट लिया है, पूजा जरूर करते हैं गीता जयंती पर, बाकी कोर्ट में रह गई कसम खाने के लिए। और मनुष्य ने यही समझ लिया इसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्या करना है, क्योंकि आज की दुनिया में व्यक्ति अपना टाइम वही इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से कुछ प्राप्ति हो, और उसको लगता है गीता से हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको समझ करके भी क्या करना है। लेकिन गीता के अंदर जो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है कि जिस विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सभी मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं कि ये गीता ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे, खूब साधना तपस्या करते थे, और कई बार ऐसी साधना की अवस्था हो जाती थी कि ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, और उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगती थी। इसी तरह जब गीता ज्ञान की प्राप्ति होने लगी उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में, तो जब उस स्टेज से नीचे आए तब उनको महसूस हुआ कि इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिला है आज, यह ज्ञान मुझे मनुष्य तक जरूर पहुंचाना चाहिए, उनको उपयोगी है ये। परंतु जब लिखने बैठे तो ट्रांसेंडेंटल स्टेज की कुछ बातें लुप्त हो गई, भूल गए, लिख नहीं पाए, तब उनको लगा कि ये तो जरूरी है कि लिखूं मैं इसको, ताकि आने वाले समय के लिए मनुष्य तक ये बात पहुंचे। लेकिन कौन लिखेगा, तब वो भगवान को निवेदन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कल आगे चलेगा, तो उसको लिपिबद्ध करना बहुत आवश्यक है। तब भगवान से वो विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाया तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा। तो भगवान ने उन्हें इशारा किया कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, उन्हें बुलाइए। तो वो गणेश जी को निवेदन करते हैं, और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो भगवान से विनती करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो, यह ग्रंथ में अपने मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था से प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ये बात पहले किसी ने हमें नहीं बताई कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ क्या है कि जिस तरह आज मान लो कि एक छोटा बच्चा हो, और उस बच्चे को मैं रोज सुबह उठ के कहूं बेटा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, ज्ञान इतना ही है सत्य बोलो, लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसका उपदेश दूं तो उसके डेप्थ को वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सच का पात्र लूं, एक झूठ का पात्र लूं, और कैसे सच बोलने से फायदा होता है, झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, उस कहानी के माध्यम से उसको मैं स्पष्ट करती हूं। तो बच्चा उस सच की वैल्यू को, उसकी डेप्थ को शायद समझ पाएगा और उस कहानी से इतना इंस्पायर होकर के जब कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे मौके आए और वो सोचेगा उस कहानी से इंस्पायर होकर के, चलो मैं सच बोल करके देखता हूं, प्रयोग करके देखता हूं, और उसमें जो प्राप्ति होती है तब वो सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, जो प्राप्ति हुई, जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट अंदर में मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत अच्छा उसको लगा, तो शायद हमेशा के लिए उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है लाइफ में। लेकिन अगर मैं उस कहानी को स्पष्ट नहीं करती थी तो उसके मर्म को वो समझ नहीं पाता था और सत्य का प्रयोग नहीं कर पाता था। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी को भी लगा कि ये गीता ज्ञान इतना गूढ़ है, इतना डीप सीक्रेट्स है इसके अंदर, अगर सीधा सीधा मैंने कहा तो मनुष्य भी समझ नहीं पाएगा। तब उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कथा का निर्माण किया जिसको कहा महाभारत की कथा। इसलिए मैंने कहा यह आज दिन तक किसी ने हमें बताया नहीं कि महाभारत की कथा ये महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना है। वर्तमान समय को देखते हुए उसने ये कथा का निर्माण किया और उस कथा के माध्यम से वर्तमान समय के लोगों को जीवन की कुछ बातें बताना चाहा, जीवन जीने की कला सिखाना चाहा। महर्षि वेद व्यास जी, लेकिन ये श्लोक बहुत स्पष्ट करता है महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक कि ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। क्योंकि आज दिन तक हम यही समझते आए महाभारत जैसा था, कौरव भी थे पांडव भी थे और पूरा युद्ध भी हुआ था, लेकिन आज हम उसको एक अलग एंगल से देखते हैं और कैसे हमारे जीवन से ये कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उस रीति से उसको देखेंगे। महर्षि वेद व्यास जी कहा जब साधना में बैठते थे, उस समाधि अवस्था में, उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, तो ही वॉज एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम। और जब कलयुग को देखा था उन्होंने अपने विजन्स में कि कलयुग में मनुष्य की लाइफस्टाइल कैसी होगी और किस तरह का जीवन संघर्ष बनेगा, ये जब उन्होंने देखा तो उनके मन के अंदर इतनी करुणा जागृत हुई कि उन्हें लगा कि इनको दिशा निर्देश देना जरूरी है, उनको डायरेक्शन देना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने ये कथा लिखी। इस कथा की विशेषता क्या है? मुझे याद आता है कि फ्रांस के अंदर नॉस्ट्रोडेमस हो गया और नॉस्ट्रोडेमस ने भी विश्व का भविष्य गोले में देखा, लेकिन जब उस विश्व के भविष्य को गोले में देखा और लिखा तो इतना अलंकारिक भाषा में लिखा और काव्य रूप में लिखा, कविता के फॉर्म में लिखा और इतनी हाई लैंग्वेज यूज किया कि लोग समझ ही नहीं पाए। आज भी लोग जब नॉस्ट्रोडेमस की प्रोफेसिस को पढ़ते हैं नहीं समझ पाते हैं, घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ ये बात लिखी थी उसने, उस समय समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि हो गए, फ्रांस के लोग अगर, तो भारत तो इतना पुराना है, वहां ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे ऋषि जन्मे कि जिनके पास ऐसी शक्ति थी कि आज से 5000 साल पूर्व वो 5000 साल को देख सके, विश्व के भविष्य को देख सके। लेकिन उन्होंने जो कहानी के फॉर्म में लिखा, अपने मन की कल्पनाओं से एक कहानी को फॉर्म दिया, तो लोग समझ ले हो गया ऐसा होगा, ऐसे लोग भी होंगे, हमारे जीवन से क्या कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन और रिलेशन किसी ने समझाया ही नहीं हमें। और उन्होंने सिर्फ क्या क्या होगा वो बातें नहीं लिखी, लेकिन उस समय की परिस्थिति के समय में हमें क्या करना होगा, समाधान क्या होगा, वो समाधान भी सब कुछ लिखा। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की ये कथा विशेष है, क्योंकि एक श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हर बात का समाधान है। कितने लेवल का समाधान है? हर लेवल का। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम कहते हैं फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान मिलता है। तो एक व्यक्ति की मनोदशा को देखे उसका समाधान भी मिलेगा, एक पारिवारिक स्थिति को देखे फैमिली लाइफ उसका समाधान भी है, एक सामाजिक स्थिति को देखा जाए उसका समाधान भी है, एक राष्ट्रीय स्थिति को देखा जाए उसका समाधान भी है, और पूरे विश्व के लेवल पर देखा जाए उसका समाधान भी है। कैसे? उस चीज को अगर हम स्पष्ट करें तो व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति की मनोदशा है कि आज व्यक्ति को ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ रहा है कि कभी कभी उसको जीवन असार महसूस होने लगता है और उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटता है, आत्मविश्वास टूट जाता है, कई बार ऐसी हालतें पैदा हो जाती जीवन में, आत्मविश्वास टूटता है, भगवान में विश्वास समाप्त होने लगता है, हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है, हमारे मूल्य बिखरने लगते हैं, सारी हदें क्रॉस करने लगते हैं। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करते और कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं कि कुछ नहीं है, खत्म कर दो, लाइफ को ही खत्म करने का सोच लेते हैं। ऐसी जब लाइफ की स्थिति हो जाए, ऐसी चैलेंजेस जब जीवन के अंदर आ जाए, उसी को ही अर्जुन के रूप में दर्शाया है, क्योंकि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास, निराश, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को विनती करने लगा, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतने लोगों को मारने का पाप मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। तो वो तो क्षत्रिय था, बचपन से ही युद्ध करता आया, कितने युद्ध कर दिए, तब एहसास नहीं हुआ कि मैंने कितना पाप किया, कितने लोगों को मारा? महाभारत के समय ये एहसास क्यों? और इतना कायरतापूर्ण शब्द जो उच्चारण किए, जो भगवान कहते हैं, आज अर्जुन मुझे तुझ पर हंसी आ रही है कि तुम ऐसा बोल रहा है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो गया है, कई युद्ध जीवन के संघर्ष को तो हमने पार कर दिए, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं कि कि जहां व्यक्ति को समय हालात और अपने संबंधी के बीच में चुनाव करना पड़ता है और उस समय परिस्थिति इतनी नाजुक बनती जाती है कि क्या चुनाव करे, कौन से बात को चुने, वो अपने रिश्तेदारों को चुने, अपने परिवारजनों को चुने या हालात को चुने। आती है कि नहीं ऐसी चैलेंजेस? और उस समय शायद मन ही मन प्रार्थना में मनुष्य भी भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, अब मैं आगे लड़ना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, ये संघर्ष वाला जीवन मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कायरतापूर्ण शब्द। और तब शायद भगवान भी हमें यही कहते हैं कि अरे बच्चे, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो भी हमारे ऊपर मुस्कुराते हैं कि तुम्हारे अंदर मैंने जो क्षमता भरी है इसके लिए भरी है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है उसका समाधान गीता है, उसका समाधान गीता है। इसी तरह पारिवारिक स्थिति, आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने अपने समाधि में देखा था कि आज के युग के परिवार कैसे होंगे, परिवार में झगड़े किस बात पर होंगे। आज कोई भी परिवार में भाई भाई के बीच में झगड़े किस पर होते हैं, किस पर होते हैं? हाँ, जमीन और जायदाद को लेकर के ही झगड़े होते हैं, जमीन और जायदाद उसी को लेकर झगड़े। पांडव और कौरव भी भाई भाई थे। पांडवों ने 5 गांव मांगे, खाली इतनी जमीन मांगी, तो दुर्योधन ने क्या कह दिया, सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। और अहंकार इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, क्रोध की भावना को छोड़ना नहीं, अन्याय को छोड़ना नहीं। और ऐसे समय में कभी कभी माता पिता भी पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं, जो सत्य को परखने वाले चक्षु नहीं होते हैं। आज के समाज में ऐसा होता है परिवारों में? देखो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना, एक ही पुस्तक में एक व्यक्ति की मनोदशा, एक परिवार की स्थिति और एक सामाजिक स्थिति। आज समाज के अंदर भी शकुनी जैसे लोग है या नहीं है? हाँ, बहुत है। कहानी में तो एक ही दिखाया जाता है, कथा है ना, कहानी में तो एक ही दिखाएंगे सैंपल के रूप में, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी है? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है, घर घर में आग लगा रहा है। और उस समय समाज भी अंधा हो जाता है, धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय के परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं होते हैं। और ऐसे शकुनी के साथ हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, है कि नहीं है? आज महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, आज से 5000 साल पहले उसने ये स्थिति देखी थी समाज की, उसका समाधान भी गीता है। ऐसे ही एक राष्ट्रीय स्थिति, राष्ट्र के अंदर आज क्या चल रहा है, कोई भी राष्ट्र ले लो, एक एक नाम जो लिए है ना वो भी बहुत अर्थपूर्ण। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प करने की कोशिश करती है, महाभारत के अंदर भी महर्षि वेद व्यास जी ने कुर्सी का ही तो खेल दिखाया कि उस कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था, एक नयनहीन। और नयनहीन ये चक्षु से नहीं, जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, जो स्वार्थ में अंधा था, जो मोह में अंधा था, जो आसक्तियों में अंधा था, है ना, जो अहंकार में अंधा था। और इसीलिए वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता था। आज के कोई भी देश ले लो, चाहे अमेरिका हो या कोरिया हो या भारत हो या कोई भी हो, कुर्सी का ही तो खेल है, कुर्सी का ही खेल है कि नहीं है। उसका समाधान भी गीता है, उसका समाधान भी गीता है। तभी तो गांधी जी ने यही कहा कि जब मैं राष्ट्र की बातों को लेकर के उलझ जाता हूं, मुझे कोई समाधान नहीं मिलता है, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल करके पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पार्श्वी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही भयानक होता है, देश के लिए भी, कोई भी देश के लिए। उसका समाधान भी गीता है। और पूरे वैश्विक स्थिति, आज विश्व एक ऐसी संकटमय स्थिति से गुजर रहा है जो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उन्हें योग युक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। विश्व की हर आत्मा आज मोह के शिकंजे में आ गई है। अर्जुन जैसा वीर योद्धा, जब महाभारत का समय आया, उसने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और भगवान बीच में ले गए और फिर वो उदास हो गया, शस्त्र छोड़ दिया और कहा मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं रहा? क्या कहेंगे? कौन सी भावना में? मोह में। किसके प्रति मोह? मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, जिसने बचपन से लेकर के अन्याय ही किए हो पांडवों के साथ, बचपन से लेकर के अन्याय हुआ हो, उनके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? उनके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? आज अगर मान लो कि उस अर्जुन की जगह पर आप हो और बचपन से आपके साथ वही वडिलों ने, वही बड़ों ने अन्याय ही किया हो, आपको कभी उनके प्रति मोह जागृत होगा? होगा? तो क्यों, क्यों लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ? क्यों शस्त्र छोड़ दिए? मोह तो जरूर जागृत हुआ, लेकिन उन बड़ों के प्रति नहीं, उनके प्रति नहीं, न द्रोणाचार्य के प्रति, न भीष्म पितामह के प्रति, न कोई चाचा मामा काका के प्रति, किसी के प्रति नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं कि मान लो एक जज साहब है, जब जज की कुर्सी पर बैठे हैं, जो केस आता है उसकी सुनवाई होती है और उस सबूतों के आधार पर जजमेंट देते हैं कि भाई उसने ये व्यक्ति ने खून किया, ऐसा किया, ये कर्म किया, इसलिए उसको फांसी की सजा, कितने लोगों को फांसी सजा दे दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसी कटघरे में उसी जज साहब का अपना बेटा, उसने कोई ऐसा कर्म किया कि जिसकी सजा फांसी ही थी, और जज साहब की हालत क्या होगी? एक ही पुत्र हो उसका तो उसकी क्या हालत होगी? कि उस समय वो भी अपील करेगा या नहीं करेगा कि भाई आजकल के नौजवान राह भटक जाते हैं, कभी कभी उनको अवसर देना चाहिए सुधरने का, सीधा फांसी नहीं लटकाना चाहिए। लेकिन उसके पहले जो इतने लोगों को फांसी लटका चुका, वो तब ज्ञान नहीं आया, अपना बेटा था तब ज्ञान जागृत हो गया। अर्जुन की हालत यही थी, जब बीच में ले गए रथ को, दोनों सेनाओं को देखा, उसमें उसने जब अपने पुत्र खड़े देखे, कोई भी पिता का जब पुत्र मोह जागृत होता है ना, तो यही हालत होती है। और वो जानता था कि भगवान ने हम 5 पांडवों की गारंटी जरूर ली है, लेकिन मेरे पुत्र की गारंटी भगवान ने नहीं ली है, और इसीलिए कौरव हमें नहीं मार सकेंगे, लेकिन वे मेरे पुत्र को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगर हमें वो राज्य भी मिल गया तो क्या उसका सुख भोग सकेंगे, या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि उसके लिए मुझे अपने बच्चों की बलि देनी पड़ी है, ये राज्य भाग तो सुख तो मिलेगा ही नहीं, उससे तो मैं अपने परिवार के साथ भले जंगल में रहूं लेकिन सुख तो मिलेगा अपनों के साथ रहने का। ये पुत्र मोह जागृत हो गया था उसका, इसलिए वो इतनी समझदारी की बातें करने लगा कि इतने लोगों को मार के अपने ऊपर मैं पाप क्यों लूं? वास्तव में तो अपने बच्चों को खोने का दर्द आज कोई भी व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बच्चों का किडनैपिंग हो जाए और फिरौती मांगने वाले जो कुछ भी उससे सैक्रिफाइस करवाना चाहे, करेगा या नहीं करेगा? अर्जुन की हालत वही थी। माना आज एक कॉमन मैन की मनस्थिति क्या होती है, ये महर्षि वेदव्यास जी ने अपने मन की कल्पनाओं के विस्तार से इतना एक्यूरेट दर्शाया है कि आज हर इंसान पुत्र मोह के शिकंजे में ऐसे पड़े हैं, और तब वो जीवन का संघर्ष करना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं उसको अपने बच्चे हो, अपने ही बच्चे हैं जिसके प्रति बहुत गहरा मोह है, और एक तरफ धर्म है, तो धर्म की तरफ जाए या बच्चे की तरफ जाए, ये कशमकशी अर्जुन के लिए थी जो आज हर इंसान के लिए है। और इसलिए आज का इंसान भी अर्जुन की तरह धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ना है। धर्म भले छूट जाए, मेरा कर्तव्य भले छूट जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा बच्चे अगर मर जाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। है कि नहीं आज ऐसी मनस्थिति? सारे विश्व के आत्माओं की ये मोह की जो मनस्थिति है, और उस मोह के कारण जो उसकी बातें हैं, तब भगवान आकर के उसको भुला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं। इस जन्म में तेरे बच्चे हैं, बाकी तो वो आत्मा है, और सारे संसार की आत्मा ही है, इसलिए पहला पाठ उसको दूसरे अध्याय में आत्मा का ही दिया, और उसके मन को योग युक्त बनाने का प्रयत्न किया कि इस मोह से ऊपर उठ करके तुम देखेगे तो बहुत बड़े रूप में तुम्हें अपने कर्तव्य, जीवन का उद्देश्य, तुम्हारा इस संसार में आने का मकसद, ये सब समझ में आने लगेगा। आज लोग सवाल पूछते रहते हैं, आखिर जीवन का मकसद क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, भगवान ने हमें क्यों भेजा, ये दुनिया क्यों बनाई, कितने सारे सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब जब हम अपने मन को इस मोह के बंधन से ऊपर उठाएंगे, तो शायद हमें
स्पष्ट नजर आएगा कि मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है, भगवान का इस संसार को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, और मेरा रोल क्या है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये तब मुझे समझ में आने लगेगा। तब तक मैं उस कुएं के मेंढक की तरह ही वहीं भटकता रहूंगा, बिना उद्देश्य को जाने मैं सारा जीवन समाप्त कर दूंगा, और लास्ट में जब एहसास होगा तो शायद इतना पश्चाताप होगा कि काश ये ज्ञान पहले आ गया होता था तो मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करता था। इसलिए भगवान उसको उस धर्म को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम इस मोह के उससे ऊपर उठ तो तेरे को समझ में आएगा। बच्चों को खोना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, लेकिन जब मन स्थिति को, कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे तो शायद एक बहुत अच्छी तरह से हम परिवार की भी परवरिश कर सकेंगे, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकेंगे, बिना अन्याय किए हम निभा सकेंगे, बिना अहंकार में आए, बिना अंधे हुए हम बहुत अच्छी तरह से अपनी जवाबदारी, और शायद युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। नहीं तो उस मोह के कारण हर समय हमें युद्ध करना पड़ रहा है, और फिर हम कहते ये जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, जीवन एक युद्ध है। अरे युद्ध किसके लिए है, और उस युद्ध से ऊपर उठने का माध्यम क्या है, ताकि सही मायने में हम जीवन जीना सीखे, ये भगवान अर्जुन को यानी हम सब अर्जुन को समझाना चाहते हैं। कैसे, एक बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने है, महाभारत का यह बहुत पॉपुलर दृश्य है जो हम सबको मालूम है, लेकिन उसके पीछे जो सिखाना चाहा भगवान ने कि कुरु परिवार है जिसमें पांडव और कौरव दोनों भाई भाई है। कुरु का मतलब है करो, उसमें पांडव अर्थात जो भगवान से प्रीत करने वाले, प्रीत बुद्धि पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव अर्थात जो भगवान से विपरीत रहने वाले, पाप कर्म करने वाले, अधर्म के कर्म करने वाले। कहा जाता है कि दोनों ही भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। उस समय दिखाया यह है कि भगवान लेटे हुए हैं, तो दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। स्वाभाविक है, जब भगवान ने आंखें खोली तो सामने अर्जुन को देखा, पूछा हे अर्जुन तुम कब आए, तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज की दुनिया में ऐसे ही होता है, अधर्म वाले अपना हक हमेशा मांगने का प्रयत्न करते हैं, अपना अधिकार चाहिए, मुझे पहले मांगना है, हर बात में वो चाहे हुक और क्रुक अपना हिस्सा, अपना अधिकार पहले, देने की बात में नहीं लेने की बात में। अर्जुन ने कहा भाई तू मांग ले कोई बात नहीं। तो भगवान ने दुर्योधन से पूछा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, क्या चाहिए तुझे, और फिर एक वाक्य वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा करके भेजा था, तू उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रथ चलाने वाला हूं, तब दुर्योधन ने सोचा फिर मांग के फायदा ही क्या, इसलिए उसने मांग लिया मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। वो ये समझ ही नहीं पाया कि भगवान अगर खाली रथ भी चलाएंगे तो भी जिस तरफ भगवान रहेगा विजय तो उसी की होगी। ये नहीं समझ पाया क्यों? क्योंकि सिरहाने बैठा था, और सिरहाने बैठने का मतलब है अहंकार का प्रतीक। कि जब व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में होता है तो सच्चाई को समझ नहीं पाता है, इसलिए ही ऑलवेज गोज फॉर अ रॉन्ग चॉइस, गलत डिसीशन ही लेता है, क्योंकि वो भगवान की क्षमता को और शक्ति को पहचानने की दृष्टि नहीं रखता है। और तब अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हैं बस। वो जानता था कि अगर भगवान शस्त्र न भी उठाए तो भी वो ऐसी विधि बता सकते हैं कि हर संघर्ष विजय में बदल जाएगा। ये विश्वास था। क्यों? क्योंकि पैरों के पास खड़ा था, और पैरों के पास खड़ा रहना मतलब नम्रता का प्रतीक। ईश्वर को पहचानने की शक्ति तभी आती है जब जीवन के अंदर निर्माणता हो, नम्रता हो। अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को भी कुछ नहीं समझता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, लेकिन यही तो उसकी गलत सोच कहो या गलत डिसीशन। आज कलयुग के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे दुर्योधन बहुत है जो अपने अहंकार के नशे में रहते हैं, और इसीलिए दे गो फॉर अ रॉन्ग चॉइस, एक गलत निर्णय जीवन के अंदर। सोचने की बात तो ये है, पता नहीं आपने कभी सोचा नहीं सोचा, सोचने की बात यह है कि दुर्योधन के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि जी अक्षौणी की सेना में मांग रहा हूं, ये अक्षौणी की सेना है किसकी, किसकी? नारायणी सेना है ना, नारायणी सेना थी। अब जिस नारायण ने अगर उस सेना का पालन पोषण किया हो, इतनी परवरिश की हो, अगर उसका मालिक कह दे भाई जा तुम उधर से लड़ो, लेकिन अगर मालिक सामने हो तो वो अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की भी हिम्मत करेंगे क्या? तो ये अक्षौणी सेना मांग करके भी उसी वक्त दुर्योधन हार गया था, हार गया था, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आई। कई बार हम रॉन्ग चॉइस करते ही हार, लेकिन महसूस फिर भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार के नशे में होते हैं। भगवान यहां बहुत अच्छी बात आज के मनुष्य को समझाना चाहते हैं कि कलयुग के अंदर संघर्ष में विजयी होना हो, पहली बात, पहला सिद्धांत, नम्रता छोड़ना नहीं, अहंकार के नशे में आना नहीं, नहीं तो उसी वक्त हार निश्चित कर लेते हैं हम। ये दृश्य हम सभी ने कितनी बार सुने होंगे, महर्षि वेद व्यास ने ये दृश्य जो रखा, आज के मानव को कुछ समाधान देना चाहा कि कहां से हम राह भटकते हैं, अहंकार में आकर के ही राह भटकते हैं, गलत डिसीशन लेना शुरू करते हैं। इसीलिए सावधान, सावधान कर दिया, लेकिन ये संदेश किसी ने हमें समझाया नहीं। इतना वैल्यूबल चीजें हैं, फिर भी हम उससे वंचित ही रह गए। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, पांडव और कौरव, पांडव कितने 5 और कौरव कितने 100, परसेंटेज कितने पर निकलता है 100 पर निकलता है। आज की दुनिया को 100% अगर लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे, ओनली 5%। और ये 5 पांडवों में भी कौन थे? तो हर मनुष्य के अंदर दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति, दोनों अच्छाई बुराई दोनों होती है। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी प्रवृत्ति को जागृत करते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, पांडव बनना चाहते हैं या कौरव बनना चाहते हैं। ये हमारी चॉइस होगी कि हमें किस रास्ते पर जाना है। बाकी मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, जिसको वो प्रमोट करना चाहे ये उसकी फ्रीडम है, वो भगवान के ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। भगवान कहेगा मैंने तुम्हें समझ दी थी, विवेक दिया था और तुम्हें चॉइसेस भी दिए थे तुम्हें किस तरफ जाना है, अपॉर्चुनिटी भी दिया था कि ताकि तुम सही चॉइस कर सको, अब तुमने जो किया वो भोगो, कहते हैं ना, तुमने जो किया वो अनुभव करो। पांच पांडव में भी कौन कौन थे? तो सबसे पहले युधिष्ठिर, कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, आध्यात्मिक भाववान, स्थिरता जिसके अंदर थी, ऐसी स्थिर बुद्धि व्यक्ति, उसको कहा युधिष्ठिर, है ना, धर्मराज, जो सही गलत को समझ सकते थे। दूसरा नंबर था भीम, शक्तिशाली, आत्मशक्ति से संपन्न, आत्मबल से युक्त, पावरफुल आत्मा। आज की दुनिया के अंदर युधिष्ठिर यानी स्टेबल माइंड, जहां दुनिया के अंदर इतने वेवरिंग माइंड वाले लोग हैं, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। और भीम माना स्ट्रांग विल पावर, आज की दुनिया में जहां लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, अर्जन करना जानता था, अर्जित करने का भाव जिसके अंदर था, ग्रहण करना, अच्छी बातों को ग्रहण करना, पॉजिटिविटी को जीवन के अंदर ग्रहण करना। आज जहां चारों ओर नेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसी नेगेटिव दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला, नकुल, न इस कुल का न उस कुल का, किसी भी कुल का हो, लेकिन जीवन में नियम सिद्धांत बहुत आवश्यक है। आज की दुनिया में देखा जाता ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद जीवन के अंदर सिद्धांत नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, है ना, तो ना इस कुल का ना उस कुल का, ना उच्च कुल का ना नीच कुल, लेकिन फिर भी आज दुनिया के अंदर वही व्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया जिसके जीवन के अंदर नियम सिद्धांत है, मर्यादाएं हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अगर नियम मर्यादा सिद्धांत ही न हो, संयम ही न हो, तो उस कुल का कहेंगे क्या उसको? तो इसीलिए नियम मर्यादा संयम में जो मजबूत था, आज की दुनिया में जहां नियम मर्यादा सिद्धांत है ही नहीं, ऐसे संसार के अंदर नियमों से चलने वाला, जीवन सिद्धांतों पर जीने वाला कितने परसेंटेज? ओनली 1%। और पांचवा नंबर था सहदेव, हर अच्छे कार्य में सहयोग देने वाला, क्योंकि उनके पास दिव्य बुद्धि का वरदान था कि वो भविष्य को समझ सकता था। आज की दुनिया के अंदर सहयोग, अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है,
या सबके बीच में मेरा सम्मान तो जरूर हो, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन सहदेव ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला। कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सब कौन हो? हा? पांडव तो है तभी तो यहां बैठे हैं, कौरव तो यहां बैठ नहीं सकते हैं। अगर आए भी होंगे तो भी कैंपस में बाहर गए, यहां बैठ नहीं सकते। गीता ज्ञान उनके लिए नहीं होता है, गीता ज्ञान खाली पांडवों के लिए है, है ना। इसलिए पांडव तो आप सभी हो, लेकिन कौन सा पांडव, कौन सा पांडव? जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड, वेवरिंग माइंड वाले नहीं है। जरा हाथ तो खड़ा करो, स्टेबल माइंड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो समझते हैं भीम है, स्ट्रांग विल पावर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो समझते हैं अर्जुन है, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड। अच्छा, जो समझते हैं नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, वेरी गुड। और जो समझते हैं कि हम सहदेव है, अच्छे कार्य में सहयोग देना जानते हैं, वेरी गुड। पांच, बहुत अच्छी बात है, पांचों ही है तो। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए, जिसने यहां बैठने के बाद भी, गीता ज्ञान सुनने के बावजूद भी किसी में हाथ नहीं उठाया। वो कौन है, वो कौन है? हाँ, वो कौन है? शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा पांडव है, असमंजस में है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं इस मंच से कि जो भी यहां बैठे हुए हैं, हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए ही यहां बैठे हैं। तो ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पॉजिटिविटी को ग्रहण करने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पांडव बनने की मुबारक हो। और दूसरी ओर, दूसरी ओर हम कौरवों को देखते हैं, धृतराष्ट्र या कौरव माना धर्म पक्ष के वाचक, धृतराष्ट्र जो अंधा था, राजसत्ता बाहुबल भूमि के अभिमान में अंधा, जैसे कहा महत्वाकांक्षाओं में अंधा, स्वार्थ में अंधा, खुद के सिवाय उसको और कुछ नहीं दिखाई देता था, ऐसा स्वार्थ में अंधा हो गया था, मोह में अंधा था, है ना। तो इसीलिए, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, उसने खुद आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब महाभारत और गीता का अध्ययन कर रही थी तो उस समय विचार आया कि अगर मान लो किसी का पति नेत्रहीन हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जिसने खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली, है ना। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कितना सुंदर है, कि आज की दुनिया में अगर कोई पति गलत काम, गलत आचरण कर रहा है, उसकी पत्नी जानते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, खुद उस समय आंखों पर पट्टी बांध लेती है, देखते हुए देखना नहीं चाहती है, अन्याय हो रहा है भले होने दो, कुछ कहना नहीं चाहती है। है कि नहीं ऐसी गांधारी आज की दुनिया में? बहुत है, बहुत है। और कोई अगर उनके पास जाता भी है कि भाई आप अपने पति को समझाइए, इतना अन्याय हमारे साथ न करे, जानते हुए समझते हुए क्या कहेगी? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है देख लेंगे, सोचेंगे, है ना? तो गांधारी भी बहुत है। और फिर कहीं से कौरवों के नामों की लिस्ट मिल गई इंटरनेट से, देखा कि अधिकतर कौरवों के नाम जो है अधिकतर दू से आरंभ होते हैं। दू का मतलब है दुष्टता, दू का मतलब है जो दूसरों को दुख देना जानता है। तब मैं सोच में पड़ गई कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर नाम रखते हैं, मीनिंगफुल। ये धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे माँ बाप थे जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे रख दिए? प्रेम भाई बता रहे थे, जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वो सब कुछ होगा। आप खुद के प्रति कभी नेगेटिव न बोलो न सोचो। तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे कैसे रख दिए? आज की दुनिया में दो ही नाम मेरे दिमाग में आते हैं जो दू से आरंभ होते हैं। एक है दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला, और दूसरा है दुर्गा, जो दुर्गुणों को मिटाने वाली है। ये दो ही नाम आते हैं दू से, बाकी कोई नाम नहीं है। तो इसीलिए नाम रखते थे तो भी दू से ऐसे नाम रखते थे। दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करने वाला। आज समाज में ऐसे बच्चे है या नहीं है? बहुत है। दुशासन करने वाला व्यक्ति है या नहीं है? बहुत है। दुष्ट, दुर्मुख, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुष्कर्ण, एक इंद्रिया। माना महर्षि वेद व्यास जी ने ये नाम बड़े सोच समझ करके दिए हैं, क्योंकि उसके मन की कल्पना क्या कि भले आज उस नाम के लोग नहीं है लेकिन चरित्र से ऐसे लोग जरूर है। तो शासन करने वाले भी है, दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि खराब है, दुष्कर्ण जो बुरी बातों सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो बुरी बातें बोलने के शौकीन है, दुर्बुद्धि जिसकी बुद्धि में हमेशा उल्टी बातें ही चलती हो। आज है कि नहीं चरित्र वाइज ऐसे आत्माएं? और लास्ट में एक बहन, वो भी दुशीला। दुशीला, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला। जब ये बात कह रही थी तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहन जी आजकल टीवी में यही दिखाया जाता है। मैंने कहा क्या दिखाया जाता है? तो कहा टीवी सीरियल जितनी भी चलती है ना, उसमें यही दिखाया है कि घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, नफरत कैसे करना चाहिए, यही दिखाया हुआ है। और उसमें भी नारियों की भूमिका, ये सब सीरियलों में नारियों की भूमिका। तो माना प्रैक्टिकल समाज में ऐसा होता होगा तभी तो सीरियल बनाई गई है, होता है कि नहीं होता है? तो दुशीलाएं भी है या नहीं है? है, बहुत है। दुशीलाएं भी है तो कौरव भी है, पांडव भी है। उस नाम से नहीं, उस चरित्र से तो है, है। और फिर महाभारत का युद्ध के समय गीता का जन्म हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद बज गया है, युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई थी, तो वहां पर कार्यक्रम के बाद मुझे कहा चलो आपको थोड़ा ऐतिहासिक स्थल यहां दिखाने ले चलते हैं। हमने कहा चलिए। जब जा रहे थे तो रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने कहा क्या था फिर? तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था। स्थानेश्वर एक शिवजी का मंदिर है, बहुत छोटा सा, और उस मंदिर से ही गांव को जाना जाता था। बहुत छोटा सा गांव था, कस्बा था। लेकिन 1947 में एक कलेक्टर यहां आए, जिन्हें ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी, भगवान जहां आए और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं है,
तब उन्होंने नाम बदली किया स्थानेश्वर से, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता, थानेसर से स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नामकरण किया 1947 में। आश्चर्य की बात यह है कि जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी हो अगर प्रैक्टिकल में, और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर न हो, कैसी कैसे आश्चर्य की बात है कि 47 के बाद उसको नाम मिलता है, उसको एक रिकग्निशन मिलता है। और उसके बाद उसने डेवलप करना शुरू किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लाने के लिए ऐसे ऐतिहासिक स्थल बनाए गए, माना वो स्थल थे नहीं, हो सकता उसकी मन की कल्पना का विस्तार है यही कहेंगे, क्योंकि उसने बनाए इसको डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मुझे लेके गए ज्योति सर, जहां एक्चुअल युद्ध का मैदान है, कहा यहां पर युद्ध हुआ था, और ये वो स्थान है ज्योति सर जहां पर गीता उपदेश दिया गया था, 84 कोस दिखाते हैं जहां अक्षौणी सेना खड़ी हुई थी, और ये मध्य स्थान है जहां पर गीता का उपदेश, तो वहां तख्ती लगी हुई गीता उपदेश स्थल, कि यहां रथ बनाया गया कि ये स्थान पर लाकर रथ खड़ा किया गया था। और फिर अर्जुन निराश हो गया, उदास हो गया, शस्त्र छोड़ दिया, और फिर भगवान ने उसको गीता ज्ञान देना शुरू किया। जब मुझे बताया जा रहा था, मैंने उस भाई से पूछा, एक बात बताओ कि गीता ज्ञान देने के लिए भगवान को कितना वक्त लगा, 700 श्लोक 18 अध्याय का गीता ज्ञान देने में कितना वक्त लगा? तो मुझे उसने बताया 3.5 घंटे लगे थे। ऐसे शास्त्र कहते हैं 3.5 घंटे भगवान को लगे गीता ज्ञान सुनाने में अर्जुन को। तो मैंने उस वक्त उस भाई से पूछा, एक बात बताओ, शास्त्र में ये भी तो लिखा होगा कि फिर 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या उसके पास इतनी पेशेंस थी, इतनी धैर्यता थी कि 3.5 घंटे तक वो खड़े होकर के भगवान ज्ञान दे रहा है, वो खड़े होकर देख रहा है, सुनाई तो दे नहीं रहा था वो क्या कह रहे हैं, तो क्या उसके अंदर इतनी पेशेंस थी? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और कहने लगे, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर एक दूसरे भाई ने, उस समय सब फ्रीज कर दिया था भगवान ने, इसलिए सब स्टैच्यू हो गए थे, कोई हिल ही नहीं रहा था, फ्रीज कर दिया था, टाइम को फ्रीज कर दिया था। अब सोचने की बात तो यह है कि दूसरी और पहले अध्याय में ही आता है कि हर एक महारथियों ने अपने अपने शंख बजाना चालू कर दिया है ना, तो फ्रीज तो हुआ ही नहीं था। और दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर के सारी रणनीति पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें 3.5 घंटे लगे, ऐसा तो है नहीं कि 3.5 घंटे लग जाए। जब शंख बजा दिया, माना युद्ध का घोषणा हो गई, और उसके बाद उसको गीता ज्ञान सुनाया जा रहा। आज अगर रास्ते में कोई दो व्यक्ति लड़ने के मूड पर हो और एक को आप सज्जन देखो ढीला पड़ रहा है, आप उसको कहो मैं तुझे मोटिवेशन की बात सुनाता हूं, गीता ज्ञान सुनाता हूं, तो दूसरा क्या कहेगा? पहला थप्पड़ शायद आपको ही पड़ेगा कि यह कोई स्थान नहीं है, तुमको मोटिवेशन की बात करनी है तो घर में करना या घर से उसको सिखा के लाना दूसरी बार के लिए, लेकिन ये बार तो लड़ने दो, यही कहेंगे ना। तो दुर्योधन सीधा भगवान के पास जाकर कहता था, दिस इज नॉट द टाइम एंड प्लेस, आपको ज्ञान देना था तो घर में देते थे, अब ये कोई वक्त है क्या ज्ञान देने का, कह सकता था। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है कि ये पार्ट जरा ऐड करना भूल गए थे कि उस समय क्या हुआ था, है ना, मन की कल्पना का विस्तार है महाभारत की कथा। तो इसलिए वो बात अंदर से छूट गई। दूसरी बात अगर देखा जाए कि गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, अर्जुन को जो हर बात में आज्ञाकारी था, या दुर्योधन को? आज घर में आपके पास में दो बच्चे, एक आज्ञाकारी हर बात मानने वाला हो और एक तूफानी हो जो कोई बात नहीं मानता हो, तो ज्ञान किसको देंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही देते जाएंगे या जो तूफानी है उसको समझाएंगे? प्रैक्टिकल विवेक क्या कहता है? हाँ, तूफानी को समझाएंगे। तो गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी? दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी? तो भगवान ने दुर्योधन को न देकर अर्जुन को क्यों दिया? वाई? हाँ, लेकिन दुर्योधन को पहले समझा देते थे तो हथियार उठाने की जरूरत ही पड़ती नहीं थी। हाँ, ऐसा है कि दुर्योधन को ही पहले ज्ञान देने गए थे भगवान। शास्त्र में अगर आपने पढ़ा महाभारत में, तो पहले भगवान दुर्योधन को ही देने गए थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या कह दिया भगवान से कि भगवान मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, धर्म क्या कहता है मैं जानता हूं, और धर्म किसको कहा जाता है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। दिस इज माई प्रॉब्लम। आज की दुनिया में कौन ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहा जाता नहीं जानता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर कितने चल पाते हैं, अधर्म को कितना छोड़ पाते हैं? तो जिसने एडमिट कर दिया कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा प्रॉब्लम यह नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे में चलने की शक्ति नहीं है। अभी कुछ कहना है आपको? अब जो सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको क्या जगाएंगे? इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान देना छोड़ दिया। इसलिए अर्जुन को समझाया कि अब तू ढीला नहीं पड़, क्योंकि वो ढीला पड़ गया। अब तू कर, चल, वो तो नहीं कर सका, लेकिन तू तो कर, तू तो आज्ञाकारी है। हम भी अपने बच्चे में अगर वो तूफानी ऐसे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, जब माँ बाप को ये कह देते हैं तो क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, तू सब कुछ जानता, फिर दूसरे कोई अभी तू समझ जा, यही कहते हैं ना? क्या करते हैं? यही कहते हैं ना, भाई तू समझ जा, तू तो नहीं लड़ उसके साथ, तू समझदार है। तो भगवान ने भी यही किया के अर्जुन को इसीलिए समझाना चालू के, यानी हम सब अर्जुन को गीता ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई आप तो समझदार हो, वो तो नहीं समझते हैं, आप तो समझ रहे हो, समझो। और जीवन का संघर्ष, फिर अक्षौणी सेना। तो मैं इंटरनेट पर देख रही थी कि एक अक्षौणी में कितने लोग होते हैं, तो कहा उस समय महाभारत के समय पत्ती की इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, और उसका फिर पत्ती का अनेक गुना हो करके लास्ट में अक्षौणी आता है। तो अक्षौणी, एक पत्ती से अक्षौणी में कितना होता है, तो उसने दिखाया कि एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतना एक अक्षौणी में थे। तो 18 अक्षौणी थे सैनिक, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे। तो 18 अक्षौणी में कितने लोग थे, तो 18 से मल्टीप्लाई करें तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे। लेकिन अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला और एक योद्धा दो है, रथ पर तो दो ही होंगे, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला और एक योद्धा दो है तो डबल दी फिगर। तो रथ पर 787,320, हाथियों पर 787,320, पैदल सैनिक 19,66,300, घोड़े पर 11,80,980 घोड़े पर, ये टोटल फिगर होता है 48,23,920। और वो 84 कोस भी अगर ले तो इतना माना नियरली 50,000 पीपल उस युद्ध के मैदान में खड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र तो कितना छोटा, वो 84 कोस भी छोटा। हरियाणा अगर लिया जाए, क्योंकि एक एक हाथी को भी कितना जगह चाहिए, हाथी को, रथ को, और युद्ध करने के लिए चल मूवमेंट्स के लिए भी कितनी जगह चाहिए, ये सब को अगर देखा जाए तो हरियाणा भी छोटा पड़ जाए। और इतने ही नहीं थे, कहा जाता जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था सब अपने अपने शिविरों में चले जाते थे, माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। रात को युद्ध नहीं होता था, तो इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त हो और उनके आगे जो गार्ड्स खड़े रहते थे उन शिविरों के आगे, वो तो गिनती नहीं किया है ना। और इतना ही नहीं, लेकिन फिर सब साथ में मिलकर के भोजन बनाने वाले, भाई सब मिलकर के भोजन खाते थे, तो 47,00,000 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, ये सोचने की बात है। वो तो फिगर ऐड ही नहीं है। आज एक 500 लोगों के शादी में 500 लोग आ गए तो उसके भोजन बनाने वाले भी कितने होते हैं, सब्जी काटने वाले भी, रोटी बनाने वाले सब, तो कितने होने चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, युद्ध में कुछ जख्मी हुए तो उठाने वाले वो, उनका नर्सिंग करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, सारा फर्स्ट एड लगाने वाले, वो कितने होने चाहिए, ये सारा अगर गिनती किया जाए। और कहा जाता अकेला भीष्म पितामह एक दिन में 10,000 को मारते थे, एक दिन में 10,000 सैनिकों को वो अकेला हाथ मारते थे। तो ये सब फिगर को अगर देखा जाए तो करोड़ों में संख्या जाती है। और इसीलिए करोड़ लोग वहां पर हो, हरियाणा तो छोटा पड़ेगा। आज भी इतना पॉपुलेशन नहीं है, करोड़ लोग हरियाणा का पॉपुलेशन नहीं है, भारत का टोटल पॉपुलेशन 125,000,000 है। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी, हरियाणा की कथा नहीं लिखी, महाभारत की कथा। कि उस समय भारत का सारा पॉपुलेशन, माना आज से 5,000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था, कि जहां हर एक व्यक्ति संघर्ष वाला जीवन जी रहे, युद्ध कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, हर कोई युद्ध कर रहा है। और ऐसे समय में ही जब डिस्करेज्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उसी समय मोटिवेशन की बातें जरूरी है। उस समय आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो हमें एक दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये पूरा ज्ञान, ये पूरा गीता का ज्ञान, हर पल हर मोड़ पर कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन सा चॉइस हमें करना चाहिए, राइट चॉइस कैसे लेना, राइट डिसीशंस कैसे लेना है जीवन के अंदर, ताकि हर संघर्ष में हम विजयी हो जाए, धर्म के मार्ग पर भी चल करके और अपने परिवार के साथ रह करके दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए। आज बैलेंस बिगड़ गया, या धर्म को पकड़ने जाते हैं तो परिवार छूटने लगता, या परिवार को पकड़ने जाते हैं तो धर्म छूट जाता है। लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस तो देखा, लेकिन जीवन का संतुलन, व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, धर्म का जीवन, ये सब जीवन का बैलेंस कैसे करना, ये गीता हमें सिखाती है। इतना ऊंचा ज्ञान है जो मनुष्य जीवन में कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन आए उसको सुलझाने की क्षमता गीता के अंदर है। लेकिन इस एंगल से अगर गीता को समझेंगे तो मजा आता है, गीता पढ़ने का भी, गीता समझने का भी, जो आज दिन तक किसी ने हमें बताया नहीं। और इसीलिए हम समझते रहे, अरे थे वो महाभारत की बात है, छोड़ो हमारे घर में महाभारत क्यों चाहिए, अरे रोज महाभारत चल रहा है, रोज महाभारत चल रहा है कि नहीं। इसीलिए महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है, जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। आ गया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो इसीलिए कहा ये गीता ज्ञान उनके लिए नहीं था, हमारे लिए। वर्तमान समय, परिवार, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर, हर स्तर पर गीता समाधान देती है हमें, और बहुत सुंदर समाधान देती है जिससे हर कोई अपने जीवन के अंदर विजय का अनुभव कर सके। ओम शांति।